ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कार्तिक 12 से कार्तिक 15 गति तक करेंगे नेपाल का औपचारिक भ्रमण। त्योहारों के अवसर पर उपभोग्य वस्तुओं की होगी सहज आपूर्ति। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। दशहरे के अवसर पर करीब 20 लाख लोगों के काठमांडू घाटी छोड़ने का अनुमान और इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इसराइल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कार्तिक 12 गति नेपाल के औपचारिक भ्रमण के लिए आ रहे हैं। महासचिव गुटेरेस कार्तिक 12 गति दोपहर काठमांडू पहुंचेंगे और कार्तिक 15 गति सुबह वापस लौटेंगे। भ्रमण के दौरान महासचिव गुटेरेस नेपाल की शांति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, नेपाली शांति सेना लगायत के विषयों में विचार विमर्श करेंगे। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजार में जिन उपभोग्य वस्तुओं की कमी होगी उनकी तत्काल आपूर्ति की जाएगी। आज सुबह और आश्विन 14 गति हुई मंत्री परिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शर्मा ने कहा कि बाजार में नियमित निगरानी का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों के दौरान चीनी सहित उपभोग्य सामग्रियों की कोई कमी न होने देने के लिए तत्काल आपूर्ति प्रबंधन का काम किया जा रहा है। मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि त्योहारों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं, चोरी डकैती को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी देने, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की इस कार्तिक 12 से 15 गति तक नेपाल यात्रा को मंजूरी देने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद की बैठक में मनांग एयर दुर्घटना की जांच के लिए समिति को कार्यादेश देने, रेलवे सेवाओं के संचालन और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति, आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्रियों को G2G प्रक्रिया के जरिए खरीदने को सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, चीन दौरे पर रहे उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की स्वास्थ्य स्थिति के विषय में जानकारी दी। बता दें कि चीन दौरे पर रहे उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ को बीती रात सामान्य हृदयघात हुआ था। फिलहाल उनका इलाज बेजिंग स्थित पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और वे अभी खतरे से बाहर हैं। सभामुख देवराज घिमिरे ने संघीय संसद की गतिविधियों को प्रभावी बनाने और संसद की सक्रिय कार्यप्रणाली को आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रेस जगत से अनुरोध किया है। आज काठमांडू में विजयादशमी और अन्य त्योहारों के अवसर पर संपादकों के साथ बातचीत में सभामुख घिमिरे ने कहा कि संचार क्षेत्र का देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में महान योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संचार क्षेत्र को संसद और सांसदों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखकर संसद को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। नेपाल सरकार ने गजा क्षेत्र में सर्वसाधारण पर हुए हमलों के प्रति गंभीर ध्यानाकृष्ट होने की बात कही है। परराष्ट्र मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मंगलवार को गजा के अस्पताल में हुए हमले में बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं। इस घटना से नेपाल स्तब्ध है। इस हमले की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए नेपाल सरकार की ओर से जारी बयान में शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री विदुरा भुसाल ने कहा कि समग्र कृषि अनुसंधान को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आज बांके में कृषि मंत्रालय के अधीन संघीय कार्यालय निगरानी एवं प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नार्क के पशु प्रजनन कार्यालय का निरीक्षण करते हुए मंत्री भुसाल ने कहा कि कृषि अनुसंधान निदेशालय नार्क की पुनर्संरचना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश कृषि अनुसंधान तथा समन्वय रणनीति जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विषयों में सहकार्य करने के विषय में नेपाल और चीनी अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ। चीन भ्रमण में रहे नेपाली प्रतिनिधित्व मंडल और चीन के आपातकालीन व्यवस्थापन संबंधी निकायों के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इनमें जोखिमों का अनुगमन, भू उपग्रह के जरिए तस्वीर खींचकर बाढ़, भूस्खलन जैसे प्रकोपों की पूर्व सूचना प्रणाली को संचालित करने और आपातकालीन स्थिति में उद्धार टोली की क्षमता अभिवृद्धि करने, नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय समेत सरकार वाले निकायों के कर्मचारियों की क्षमता अभिवृद्धि करने आदि विषयों पर चर्चा की गई। ये जानकारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल ने दी। दशहरा के पांचवें दिन आज देशभर के शक्तिपीठों में स्कंद माता की पूजा की गई। आज स्कंद माता की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्त अलौकिक तेज और संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। नेपाल में दशहरा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक 15 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 15 दिनों की इस अवधि को दुर्गा पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पूरी नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा घर घर में की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दुर्गा के 9 रूपों को नवदुर्गा भी कहा जाता है। दशहरा की शुरुआत के साथ ही घाटी छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। काठमांडू घाटी ट्रैफिक पुलिस कार्यालय का अनुमान है कि इस बार दशहरे में करीब 20 लाख लोग घाटी से बाहर जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि घट स्थापना से लेकर आज सुबह तक 3.5 लाख लोग दशहरा मनाने के लिए घाटी से रवाना हुए हैं। बहरहाल नागढ़ सांगा भंजैंग और फरपिंग के रास्ते घाटी छोड़ने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। जो लोग विभिन्न उद्देश्यों से राजधानी में रह रहे हैं, वे दशहरा मनाने के लिए घाटी से अपने घर जाते हैं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने कहा है कि इस बार दशहरे के समय मौसम सामान्यतया साफ रहेगा। हालांकि देश के पहाड़ी हिस्सों में कुछ एक स्थानों में बदली और हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिर भी मौसम सामान्यतया अच्छा ही रहेगा। महाशाखा के मौसमविद रोजन लामिछाने ने ये जानकारी दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन इसराइल के साथ खड़ा है। बता दें कि जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से लोगों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है। वहीं ऋषि सुनक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ऋषि सुनक ने भी हमास को आतंकी संगठन बताया और उसे अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। इसी के साथ इस भीषण युद्ध में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे में हमास के बीच चल रही जंग के मध्य पोप फ्रांसिस ने शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने गजा में हो रही हत्या की गंभीर स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है और गजा पट्टी में इस मानवीय संकट को रोकने के लिए सहकार्य करने की भी बात कही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कार्तिक 12 से कार्तिक 15 तक करेंगे नेपाल का औपचारिक भ्रमण। त्योहारों के अवसर पर उपभोग्य वस्तुओं की होगी सहज आपूर्ति, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। दशहरे के अवसर पर करीब 20 लाख लोगों के काठमांडू घाटी छोड़ने का अनुमान और इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इसराइल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।